Hare Krishna. तो इस साल की कृष्ण लीला की कथा आज से आरंभ हो रही है. वैसे तो कल से हुई बलराम जयंती से, और वैसे देखा जाए तो जब से मंदिर की शुरुआत हुई तब से चल रही है. हर रोज भागवत क्लास तो होता ही है. भागवत भी श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, लेकिन खास करके जन्माष्टमी के पहले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना अति आवश्यक है, ताकि श्री कृष्ण के जन्म के दिवस तक पहुंचने तक हमारी चेतना इतनी कृष्ण भावना भावित हो जाए कि हम बड़े उत्साह से श्री कृष्ण के आविर्भाव के अनुष्ठान को हम मना सकें. वैसे कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य भक्तों के लिए है. जीवन में और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं है जितना कि कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन. अन्य सारे जो भी चीजें हम करते हैं केवल इसलिए करते हैं कि हम सारा हर समय 24 घंटे श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते. हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, वो रस, वो आतुरता नहीं है. भगवान श्री कृष्ण के कथाओं के प्रति वो लगाव या आकर्षण पैदा नहीं हुआ, इसलिए हम 24 घंटे नहीं कर सकते. और इसलिए क्योंकि हम ये नहीं कर सकते तो 24 घंटे में बाकी समय हमें किसी न किसी अच्छे कार्य में बिताना है, तो अलग अलग तरह के सेवा में लगाते हैं. परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जो बैठे थे और उनके साथ में जो इतने सारे ऋषि मुनिगण एकत्र हुए थे गंगा जी के तट पर, तो लगातार 7 दिन उन्होंने भागवत का श्रवण किया. उस समय सभी लोगों ने, जो भी वहां उपस्थित थे, वो उपवास कर रहे थे. भोजन तो नहीं खाया लेकिन जलपान भी नहीं किया 7 दिन लगातार. ये है कृष्ण कथा के प्रति आकर्षण. यस्याम वैश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा. जब हम श्री कृष्ण जो कि परम पुरुष हैं श्रूयमाणायाम उनके बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, भक्तिर उत्पद्यते पुंसः, मनुष्य में भक्ति का उदय होता है, और शोक मोह और भय ये तीन चीजें दूर चली जाती हैं. हृदय में ये तीन चीज रह नहीं सकते. तो इस प्रकार कृष्ण कथा का जो श्रवण कीर्तन है अपने आप में ही पुण्य है, और हमारे हृदय में जो भी अनर्थ है उनको नष्ट कर देता है. और इस कृष्ण कथा के प्रति आकर्षण जागृत करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है. जिस व्यक्ति ने अपने हृदय में ये कथा के प्रति आकर्षण जागृत नहीं किया, हमें समझना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अपना जीवन सफल नहीं बनाया है. वैसे श्रीमद् भागवत में हर एक कथा कृष्ण कथा है, लेकिन दशम स्कंद का महत्व अधिक है, क्योंकि इस दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्याम सुंदर गोविंद रूप में वृंदावन में आकर ऐसे मधुर मधुर लीलाएं प्रदर्शित करते हैं जो कि पहले उन्होंने कभी नहीं किए थे. और खास करके दशम स्कंद के पहले कई अध्याय में, जब तक कि वो वृंदावन में है, तब इन लीलाओं का माधुर्य अधिक है. हालांकि भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, सृष्टि लीला, युद्ध लीला, ये सारी लीलाएं आध्यात्मिक स्तर में हैं, इसलिए इन सब का श्रवण कीर्तन करने से अवश्य हमारा हृदय शुद्ध होगा और हमें भक्ति प्राप्त होगी. इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जो वृंदावन की लीलाएं हैं इनमें विशेषता ये है कि ये माधुरी से, मिठास से भरी हुई है, रस पूर्ण है। इसलिए जो रसज्ञ है वो इस रस का पान करने के इच्छुक होते हैं। तो हमें भी ऐसे रस के पान करने का प्रयत्न करना चाहिए। भागवत कथा तो हम सुनते ही हैं, लेकिन घर में ये भागवत हमें पढ़ना भी चाहिए, अध्ययन भी करना चाहिए। इससे हमारी रुचि बढ़ जाएगी। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। ये कृष्ण कथा अपने आप में ही पुण्य है, और जब हम ये ध्यान से, भक्ति भाव से इसका श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति, हमारे अंदर जो भी अभद्र चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब नष्ट हो जाते हैं, और फिर शुद्ध कृष्ण प्रेम का उदय हृदय में हो जाता है। पिछले साल ब्रह्म विमोहन लीला तक कथा चली थी, लेकिन संक्षेप में ब्रह्म विमोहन लीला तक जो भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में आता है, उनकी संक्षेप में वर्णन करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ ब्रज में, मथुरा में, तो वसुदेव उनको गोकुल में ले गए। वहां नंद महाराज ने बड़े धूमधाम से नंदोत्सव का त्योहार मनाया, और उसके बाद तुरंत बाद नंद महाराज को मथुरा जाना पड़ा, क्योंकि उनको कंस को कर देना था। और जब वो वहां गए तो वसुदेव से उनकी मुलाकात हुई। वसुदेव और नंद महाराज वैसे तो थे भाई, लेकिन मित्र भी थे। उन्होंने बहुत बातचीत की, और वसुदेव ने नंद महाराज से कहा कि जल्दी जाना वापस, मुझे लग रहा है कि कोई खतरे हैं वहां वृंदावन में। और जैसे लौट रहे थे नंद महाराज, वो सोच रहे थे वसुदेव की बातों के बारे में, और जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया हुआ है। पूतना राक्षसी आई थी। तो वास्तव में जो नंद महाराज वसुदेव ने कहा था वो सही निकला, और उसके बाद में एक के बाद एक कई असुर आने शुरू हो गए वृंदावन में। उसके बाद में एक असुर ने एक शकट का रूप लिया, हाथ गाड़ी का, जिसमें कि नाना प्रकार के बर्तन वगैरह रखे हुए थे, और श्री कृष्ण को, जो कि बहुत उस समय छोटे थे, उनको उस शकट के नीचे रखा हुआ था, और वो सारे बर्तन, वो शकट ही कृष्ण भगवान के नन्हे पैरों के लात से गिर गया, और वो असुर मर गया। उसका नाम था शकटासुर। उसके बाद में एक और असुर ने बवंडर का रूप लिया, तृणावर्त नाम था उसका, और श्री कृष्ण को ऊपर आकाश में ले गया। भगवान श्री कृष्ण ने अच्छा आनंद लिया आकाश में सैर करने का, और फिर तृणावर्त के गले को दबाकर उसका वध कर दिया, और फिर आराम से नीचे आकर खेलने लगे। इस प्रकार से कई असुर आते रहे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता यशोदा के गोदी में रहते हुए अपने माता को पहली बार अपना विराट रूप अपने मुंह में दिखाया। माता यशोदा आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन सोचा कि मैं स्वप्न देख रही थी। इसके बाद में नंद महाराज ने सोचा कि मुझे नामकरण संस्कार करना चाहिए मेरे बालक का, और गुप्त रीति से गर्ग मुनि द्वारा ये नामकरण संस्कार किया गया। कृष्ण का नाम कृष्ण रखा गया, बलराम का नाम बलराम रखा गया। वैसे ये नाम अनंत है, ये पहले से आते हैं हमेशा, लेकिन क्योंकि कृष्ण और बलराम मनुष्य लीला में, समाज में लीला कर रहे हैं, इसलिए दूसरे बच्चों की तरह भी उनको नामकरण संस्कार दिए जाते हैं, नाम दिए जाते हैं। वैसे नाम तो है पहले से कृष्ण का कृष्ण। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि नामकरण संस्कार के पहले फिर कृष्ण कहां थे, उनको नाम तो तब जाकर मिला, फिर उसके पहले कहां थे कृष्ण? कृष्ण तो हमेशा गोलोक वृंदावन में है, और उनका नाम भी पहले से ही कृष्ण है, लेकिन फिर भी ये लीला है कि उनको नामकरण संस्कार होता है, नाम दिया जाता है, कृष्ण, बलराम, बलदेव, बलभद्र, संकर्षण इत्यादि। जैसे कृष्ण अनंत शाश्वत हैं, उनकी लीलाएं शाश्वत हैं, वैसे उनके नाम भी शाश्वत हैं। इसके बाद में धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण जो कि अपने केवल पीठ पे रहा करते थे बाल लीला में, अब अपने पेट पे घूमकर फिरे, उत्थान जिसको बोलते हैं, और फिर धीरे धीरे अपने घुटनों पे और पैरों पे चलने लगे। बिल्कुल एक साधारण मनुष्य बालक की नकल कर रहे थे और ऐसे नहीं लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल उस भाव में रम गए थे। और ऐसे लीलाओं से वो अपने माता पिता और सारे ब्रजवासियों को बड़ा आनंद देते थे। धीरे धीरे से वो और लीलाएं करने लगे, थोड़ा बहुत जैसे घुटनों पर चलने लगे तो वहां आंगन में जो गाय के बछड़े हुआ करते थे उनके पूछ पकड़कर खींचते थे, तो ये गाय के बछड़े बड़े घबरा कर भागने लगते थे। जब ये भाग जाते तो कृष्ण और बलराम भी घबरा जाते और डर के मारे पूंछ को छोड़ते नहीं, पूंछ को पकड़कर रखते जोर से। और इस प्रकार से कृष्ण और बलराम को घसीटते हुए आंगन में ये गाय के बछड़े घूमते फिरते। और उस समय कृष्ण और बलराम उन्होंने दिगंबर वेश पहना हुआ था, अर्थात कुछ नहीं, और ऐसे उनका शरीर सारे गोबर से और मिट्टी से ढक जाता। और इन सब लीलाओं को देखकर ब्रजवासीगण बड़े आनंद की प्राप्ति करते। एक साधारण बच्चे की लीला देखकर माता पिता और रिश्तेदार इतने प्रसन्न होते हैं, दिन भर उनके पीछे घूमते फिरते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ऐसे लीला करेंगे तो कितना आकर्षक हुआ होगा, कल्पना कीजिएगा। और फिर धीरे 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 भगवान श्री कृष्ण चलने लगे अपने पैरों की शक्ति पर। पहले तो ठीक से नहीं हो पाए, गिरते थे, उठते थे, फिर से चलते थे, ऐसे करके धीरे धीरे चलना आरंभ किया। और जैसे ही चलना आरंभ किया शरारतें हरकतें शुरू हो गई। तो क्या करते थे, जाकर सब जगह माखन चोरी करते थे, बंदरों को बांटते थे, और जो पड़ोसी पड़ोस में जो ब्रजवासी रहते थे उनके बच्चों को जाके तंग करते थे, कानों में जाके पानी डालना जब वो सो रहे थे, जाके उनको कुछ न कुछ तरह से तकलीफ देना, ताकि माता पिता उन बच्चों के आके नंद महाराज और यशोदा के पास आके शिकायत करते। तो इस प्रकार से ये सुंदर लीलाएं भी चलती रहीं। इसके बाद में ये आरोप लगाया गया भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कि उन्होंने मिट्टी चोरी की है। अब वास्तव में चोरी की नहीं की, खाई नहीं खाई, वो भगवान ही जाने, श्री कृष्ण ही जानते हैं, लेकिन आरोप इनके ऊपर ऐसे लगा। और फिर माता यशोदा तक खबर पहुंची, माता यशोदा ने डांटा, कृष्ण ने कहा मैंने तो खाया नहीं, देखो मुंह खोलता हूं, अब देख लो वाकई मैंने खाया है या नहीं। और फिर दूसरी बार भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को विराट रूप दिखाया। इस बार भी माता यशोदा भ्रमित हो गई, घबरा गई एक क्षण पल के लिए, और फिर सोचने लगी कि मैं क्या सपना देख रही हूं। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की, विराट रूप दिखाना बंद कर दिया, और फिर से माता यशोदा को लगा कि ये मेरा लाडला बच्चा है, ये थोड़ी भगवान है, ये कैसे विराट रूप देख सकता है, हो सकता है कोई सपना में देख रही थी, मेरा मन कुछ चकरा गया होगा। और इसके बाद में भगवान ने अपनी दामोदर लीला प्रस्तुत की। उन्होंने मिट्टी के जो भांडे थे जिसमें दूध दही वगैरह रखे थे वो तोड़ दिए, तो माता यशोदा ने उनको बांध के रखा एक उखल तक, और फिर उखल को खींचते हुए उन्होंने दो यमलार्जुन वृक्षों को गिरा दिया। और ये यमलार्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के दो पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव थे, उनको शाप मिला था नारद मुनि के द्वारा। और कृपा याचना करने के बाद नारद मुनि ने कहा ठीक है, जब कृष्ण भगवान तुम्हें बचाएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो नारद मुनि के वचन को सही रखने के लिए कृष्ण भगवान ने उखल उन दो वृक्षों के बीच में खींचकर वो ले गए और दोनों वृक्षों को उन्होंने गिरा दिया। और इसी समय जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते गए श्री कृष्ण, वो अन्य कई लीलाएं करने लगे जिनसे कि ब्रजवासियों का मन वो बिल्कुल हर लिया उन्होंने। जब भी गोपियां गाती थीं, ताली बजाती थीं, तो धुन में श्री कृष्ण नाचना शुरू करते थे, ताली बजाना बंद करते तो कृष्ण नाचना बंद करते, मतलब जो गोपियां और ब्रजवासी कहते वो कृष्ण करते। कभी कभार गोपियां या नंद महाराज या यशोदा मैया बोलती कि अरे कृष्ण ये जरा सामान लेके आना। नंद महाराज कहते ये पादुका लेकर आना मेरे। तो उस समय कृष्ण हालांकि बहुत छोटे थे, उनके हाथ भी नन्हे थे और वजन उठा नहीं सकते थे, कभी कभी उठा पाते तो सर के लेकर वैसे लड़खड़ाते हुए आ जाते और फिर सामान दे देते, और कभी कभी जब सामान उठा नहीं पाते क्योंकि इतना भारी वजन था तो ये नहीं दिखाते कि मैं असफल हुआ, फिर अपने आप को सीधा करके अपने बाहों को थपथपाते थे ये कहने के लिए मेरे अंदर शक्ति है, ये मत सोचे कि मैं उठा नहीं सकता हूं। तो ऐसे सब लीलाएं करके सारे ब्रजवासी आनंद के समुद्र में तैरने लगते। दिन रात केवल कृष्ण की चर्चा ही चलती थी, सारा वृंदावन केवल कृष्णमय हो जाता था। और एक दिन वहां पर एक फल बेचने वाली औरत आई और वो फल बेच रही थी, जैसे कि यहां हम देखते हैं बेचने वाले आते हैं चिल्लाते हैं नीचे से अरे ये फल है ये सामान है खरीदो। तो कृष्ण भगवान ने सुना और उस टाइम जैसी पद्धति थी कि अगर हमें कोई वस्तु चाहिए था तो हमारे पास जो है वो देना पड़ता था और फिर वो लेना पड़ता था। तो कृष्ण भगवान के घर में अनाज तो बहुत था, गोरक्षा कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, तो अनाज थोड़ा सा थोड़े से दाने लिए अपने नन्हे हाथों में। उनकी इच्छा थी कि ये अनाज मैं दूंगा उस महिला को और फिर मैं फल ले लूंगा, लेकिन छोटे हाथ थे, कितना अनाज बैठ सकता था उन हाथों में, बहुत कम, और वैसे भी पकड़ नहीं पाते थे तो बहुत कुछ सारे दाने जो हैं वो उंगलियों के बीच में से नीचे गिर पड़े और जब तक श्री कृष्ण उस महिला तक पहुंचे तो दो चार दाने ही रहे थे। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण को देखकर वो महिला इतनी आकर्षित हो गई कि उसने सारे टोकरी के टोकरी भर के फल दे दिए। और जब वो महिला ने नीचे अपने टोकरी में देखा तो क्या देखती कि वो फल तो नहीं लेकिन हीरे जवाहरात रत्न मोतियां सब पड़े हुए हैं, कीमती कीमती चीजें। इसका मतलब ये है कि जब हम श्री कृष्ण को कुछ देते हैं, चाहे हमारा सब कुछ भी क्यों ना हो, कृष्ण हमें छप्पर फाड़ के देते हैं, हमें कोई डरने की नहीं। जो कृष्ण को कुछ भी देता है उसका कभी भी नुकसान नहीं होता, बल्कि उसे लाभ ही लाभ होता है। भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो लाभ होता है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा। उसके बाद माता यशोदा ने देखा कि श्री कृष्ण अभी थोड़ा बड़े होते जा रहा है और शरारत ज्यादा कर रहा है, दिन भर अपने मित्रों के साथ खेल में कूद में लगा रहता है। तो एक बार जब वो अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेल रहे थे तो उस समय माता यशोदा बाहर आई और चिल्लाकर बोलने लगी, अरे कृष्ण क्या तुम साधारण सड़क के बच्चे हो जिसके कोई माता पिता नहीं, जिसका कोई घर नहीं, क्या घर आने का समय नहीं हुआ, क्या तुम्हें खाना नहीं है? तो श्री कृष्ण घबराकर दौड़ के आए, लेकिन उस समय ग्वाल बाल मित्र बोलने लगे, देखो अभी हमारा खेल के शिखर तक पहुंचे हैं हम, अब इस समय चले गए तो सब मजा किरकिरा हो जाएगा, इसलिए अब जाओगे तो हम दोबारा तुमको नहीं लेंगे खेल में। तो कृष्ण इनसे घबराए, फिर खेल में ही रह गए। उधर माता यशोदा से डरते थे, इधर ग्वाल बालों से डरते थे। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की लीला, जिनके डर से सारा ब्रह्मांड चलता है। भीषास्मात् वातः पवते, जिनके डर से वायु चलती है, वायु बहती है। भीषो देति सूर्यः, जिनके डर से सूर्य देव अग्नि और प्रकाश देता है। भीषास्मात् अग्निश्चंद्रश्च, जिनके डर से अग्नि अपनी उष्णता देती है, चंद्र अपना शीतल प्रकाश देता है। मृत्यु धावति पंचमः, जिनके डर से मृत्यु सभी का पीछा करती है। और वो व्यक्ति भगवान अभी साधारण ग्वाल बालों से, गांव के छोटे बच्चों से और एक साधारण गांव की महिला से डरते हैं। जब ग्वाल बालों ने धमकी दी कि हम अगली बार नहीं लेंगे, नहीं ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, रहूंगा। और जब माता यशोदा ने बोला आओ जल्दी, हाँ आता हूं, तो ये है भगवान श्री कृष्ण की लीला। इसलिए कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है, केवल जिनके नेत्रों में प्रेम का अंजन लगाया हुआ है वही मात्र समझ पाएंगे इस कृष्ण को, नहीं तो समझना बहुत मुश्किल है। और इसके बाद गोपों के बीच में वहां सलाह मशवरा हुआ कि देखो अभी ये गोकुल हमारे लिए सही स्थान नहीं है, हम पहले से देख रहे हैं, जब से कृष्ण का जन्म हुआ कृष्ण के ऊपर कोई ना कोई खतरा हमेशा आया है। अब देखो, सबसे पहले पूतना राक्षसी आई, फिर वो शकटासुर आया, फिर त्रिणावर्त आया, और फिर कृष्ण भगवान ने वो दो बड़े पेड़ गिराए। और देखो, भगवान की कृपा है, अवश्य बालक के ऊपर देवताओं की कृपा हुई होगी कि ये दो वृक्ष उसके ऊपर ही नहीं गिरे, दोनों बराबर उसके साइड में आके गिर गए। अगर थोड़ा इधर उधर हो जाता तो ये बालक वृक्ष के नीचे आकर पता नहीं क्या हो जाता। और ऐसे कुछ न कुछ हर दिन हो रहा है, तो लगता है कि ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें वृंदावन में जाना चाहिए। तो फिर सारे वृंदावन गोकुल के निवासी ब्रजवासी फिर अपना बोरी बिस्तर सब लेकर बैलगाड़ियों में उनको डालकर निकल पड़े और फिर वृंदावन पहुंचे। वहां श्री कृष्ण ने जमुना जी को देखा, गोवर्धन को देखा, बड़े प्रसन्न हुए और वहां उन्होंने लीला करना आरंभ किया। इस समय कृष्ण भगवान और बलराम जी थोड़ी बहुत बोलना शुरू कर दिया था, उन्होंने अपने आधे तोतली बोली में बोलते थे और इससे ब्रजवासियों को और भी आनंद आता था। साधारण बच्चे तोतली आवाज में बोलते हैं तो लोगों को कितना आनंद आता है, तो कृष्ण बलराम जब बोले तो इतना आनंद आया लोगों को कि वो चाहते थे कि कृष्ण बलराम हमेशा बोलते रहे। अपनी माता यशोदा से कृष्ण कुछ भी कहते थे, हर बार कृष्ण भगवान तो जो बोलते हैं सत्य ही बोलते हैं। कई बार भगवान श्री कृष्ण जब बोलते थे कि माँ मैं पिछले जन्म में बहुत बड़ा राजा था, तो माता यशोदा सुनती थी, हाँ तुम्हारा नाम क्या था, कहाँ थे तुम, मैं अयोध्या में था और मेरा नाम था रामचंद्र। अच्छा, तुम्हारा नाम था रामचंद्र, तो सोचती थी बच्चा है, बकबक कर रहा है, बोल रहा है, कुछ तोतली आवाज में बोलना सीखा है, बोल रहा है। लेकिन श्री कृष्ण कितना सत्य बोल रहे थे वो नहीं मालूम था यशोदा माता। तो ऐसे तोतली बोली में ये आनंद उठाते जाते थे। और यही समय था जबकि और कृष्ण थोड़े और बड़े हुए कि उन्होंने वत्सों को बाहर चराना आरंभ किया। तो ये प्रथा है खास करके वैश्य समाज के बीच में कि वो बचपन से ही बच्चों को गाय सेवा, गो की सेवा में लगाया करते थे। ऐसे नहीं कि उनको स्कूल में भेजना है, कॉलेज में भेजना है और जो व्यर्थ भौतिक शिक्षा है वो देनी है, जिससे बच्चे की आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल नष्ट हो जाती है, जिनको कि प्रभुपाद जी आध्यात्मिक कत्लखाने बताया करते थे आजकल के स्कूल कॉलेज को। तो ये सीधे गाय की सेवा में लग जाते थे बचपन से ही। और इस प्रकार कृष्ण और बलराम अपने ग्वालवार मित्रों के संग वत्सों को, गाय के बछड़ों को चराना उन्होंने आरंभ किया और रोज वन में जाते थे और वहां जाकर उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू किया। तो इस लीला में बांसुरी बजाने की जो लीला है ये भगवान ने इस समय शुरू की जब से उनको गाय के बछड़ों को चराने का मौका मिला। वैसे तो श्री कृष्ण और बांसुरी दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण मनुष्य समाज में लीला करते हैं तो इसलिए हर एक उनकी लीला की शुरुआत है ऐसे प्रतीत होता है। जैसे कि पहली बार जब वो राधा जी से मिले, पहली बार जब रुक्मिणी देवी से मिले, तो ऐसा लगता है कि पहली बार है। पहली बार तो नहीं, हमेशा है ये, लेकिन इस लीला में ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे कि पहली बार मिल रहे हैं। तो इस समय भी कृष्ण भगवान ने पहली बार बांसुरी उठाई और बांसुरी बजाने लगे। जंगल में जाते थे और वहां जंगल में जाके भी कई प्रकार के लीलाएं करते थे जैसे कि साधारण बच्चे करते हैं। वन में सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष होते थे तो पत्थर मारकर फलों को लाते थे, कभी कभी रस्सी बांधकर फिर वो खींच लेते थे फल, जैसे कि आम के पेड़ को कैरी वगैरह प्राप्त करने के लिए बच्चे कैसे घूमते फिरते हैं, वैसे ये भी वृंदावन के जंगल में करते थे। और फिर कभी कभार फल लेकर, खास करके आमलकी फल लेकर फुटबॉल खेलते थे, ऐसे नाना प्रकार के खेल वो खेला करते थे। और जब से ये जंगल में जाना शुरू हो गया गायों को चराने के लिए, तो और भी असुर आने लगे। और एक असुर था जिसका नाम था वत्सासुर, उसने भी गाय के बछड़े का रूप धारण किया, फिर कृष्ण ने वध कर दिया उसका। उसके बाद में बकासुर आया जिसने बक का एक रूप धारण किया था, भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी वध किया। लेकिन कृष्ण के लीला में ये कोई बंधन नहीं डाल सके, बल्कि लीला के जो मिठास है उसका आनंद है ये असुर बढ़ा रहे थे। इसलिए असुर भी, इनका भी स्थान महत्वपूर्ण है कृष्ण लीला में। अगर कृष्ण, अगर असुर नहीं होते तो कृष्ण वीर रस का आस्वादन नहीं कर सकते। और फिर ग्वाल बाल जब वापस लौट के आते वृंदावन में तो कौन से लीलाओं का वर्णन करते ब्रजवासियों को? कुछ तो उनको विषय होना चाहिए था वर्णन करने के लिए। और ऐसी लीला करने से ग्वाल बाल मित्रों के हृदय में कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम और भी बढ़ते जाता था और उनको बहुत गर्व और अभिमान होता था कि देखो हमारे पास ऐसा मित्र है जैसा श्री कृष्ण, जो कि ऐसे ऐसे कार्य करता है जो कि किसी के लिए संभव नहीं है। वैसे तो कृष्ण को अपना यार मानते थे, हम उम्र थे वैसे सोचते थे कि कृष्ण कौन सा विशेष व्यक्ति है। जब प्रेम बढ़ जाता था, ज्यादा गाढ़ हो जाता था, तो फिर वो कृष्ण को कहते थे, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, तुम्हें कौन बड़ो लोग, तुम्हें आमिष हम, तुम कौन से बड़े आदमी हो, हम तुम एक समान है, तुमने वध किया है एक बकासुर का, मैं थोड़े थोड़े कम हूं, मैं भी तो वध कर सकता हूं। तो अपने शुद्धता, अपने मासूम पद्धति से ये ग्वाल बालों ने कृष्ण का हृदय इतना जीत लिया था कि कृष्ण इनके बीच में उनके ही मित्र की तरह खेल रहे थे। तो ये है कृष्ण लीला। और ऐसे वो खेल भी खेला करते थे, जैसे कि लुका छिपी, और फिर सेतु बनाना, मानो कि वो लंका की ओर जा रहे हैं, और फिर बंदरों की नकल करना, ये सब काम वन में जाकर करते थे। उनको पता नहीं चलता था कैसे समय बीत रहा है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे बीतते हैं तो उनको पता नहीं चलता कैसे समय बीत रहा है। देखिए आजकल ये समस्या हो गई है कि बच्चे बहुत जल्दी उब जाते हैं किसी भी चीज से। उनको कोई खिलौना दीजिए तो वो खिलौना एक दिन में उब जाते हैं, दूसरा नया खिलौना चाहिए। और आजकल तकनीकी विज्ञान से नए नए खिलौने आते हैं, और आजकल वीडियो गेम, टीवी गेम, ये सब हो गए हैं, फिर भी बच्चे उबते रहते हैं और चंचल होते हैं, स्थिर होता नहीं मन। लेकिन पहले के जमाने में कृष्ण और बलराम और गोप गणों के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि उनको कोई परेशानी नहीं थी, बड़े बड़े खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान की कोई आवश्यकता नहीं थी। बस जंगल में जाते थे, अरे देखो बंदर, एक बंदर कैसे कर रहा, बंदर की नकल करते थे, पक्षियों के पीछे भागते थे, फिर मेंढकों की तरह कूद सब कूद जाते थे कुंड के अंदर, फिर फूल में, पेड़ में चढ़ते थे, फल फूल निकालते थे। जंगल में, वन में इतने सारे चीजें थी उनके मन आकर्षित करने के लिए कि उनको कोई खिलौने की आवश्यकता ही नहीं थी, कोई खेलकूद की दुकान की आवश्यकता नहीं थी। वहां जाकर बैट बॉल खरीदे, सब जंगल में उपलब्ध था। फुटबॉल खेलना था, आंवला के फल ले लिए, आंवला के फल से लात मारते खेलना शुरू कर दिया। कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो भगवान ने ऐसी सृष्टि की है जिसमें सभी लोग संतुष्ट हो सकते हैं, बड़े भी और बच्चे भी, और कोई अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। तो पूरा मनोरंजन हो जाता था उनका केवल वन में जाने से, किसी भी चीज का अभाव नहीं था वहां, परिपूर्ण। यह है भगवान की सृष्टि। जिस प्रकार भगवान परिपूर्ण है, उनकी सृष्टि भी परिपूर्ण है। हमारे सारे वांछाओं को तृप्त करने में पूर्ण तरह से समर्थ है ये प्रकृति, निसर्ग, क्योंकि भगवान ने बनाए हुआ है। तो व्यक्ति को उब जाने की बात ही नहीं है। आज भी हम देखते हैं गांव में, जब लोग उनके जीवन की जो शैली है कितनी शांत है, धीरे धीरे से चलते हैं। हाँ आजकल टीवी वगैरह की वजह से और ये गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, तो अभी पद्धति बदल रही है, लेकिन पहले के जमाने में गांव में भी लोग आराम से चलते थे, कोई जल्दी नहीं था उनको। ऐसा नहीं कि दो मिनट में इधर पहुंचना है, फिर वहां पांच मिनट का काम, फिर और दो मिनट में वहां पहुंच जाना है, नहीं, आराम से शांति से उनका जीवन चलता था। सुबह जल्दी उठते थे, फिर सीधे खेत में जाते थे, खेत में काम करके आराम से करके घर आते थे, भोजन लेते थे, फिर थोड़ी हरि कथा कीर्तन होती थी शाम को, अपना घर का काम कर लेते थे, थोड़ा बहुत बैठ के बातचीत कर लेते थे। कितना आनंद का जीवन, शांति का जीवन, कोई गड़बड़ नहीं, धूम धमाका नहीं, आनंद। लेकिन आजकल प्रगति के नाम पर, विज्ञान के नाम पर हमारे सारे मन की शांति नष्ट हो चुकी है। नए पदार्थ हमें चाहिए, और जितने पदार्थ आए उनसे असंतुष्ट होते जाते हैं, और नई चीज चाहिए, और प्रगतिशील इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से संतुष्ट नहीं हुए, कलर चाहिए, कलर से और भी बड़ा चाहिए, और भी बड़ा चाहिए। लेकिन मनुष्य के लिए क्या चाहिए? केवल प्रकृति ने जो दिया है, अगर उतना उससे हम रहना सीख लें तो हम पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। और इसमें ही हम अगर भगवान श्री कृष्ण को देखें, भगवान श्री कृष्ण के सृष्टि के माध्यम से, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ऐसे ही लीला अपने खेल क्रीड़ा भी करते रहे और भगवान श्री कृष्ण पिकनिक भी करने लगे अपने ग्वाल बाल मित्रों के संग, क्योंकि सब जो भी बच्चे जाते थे तो सुबह को जाते थे, शाम को लौट कर आते थे, क्योंकि वत्सों को चरना था तो उनके चरने के लिए समय लगता है, दिन भर वो इधर उधर घास खाते खाते फिरते रहते हैं, तो बीच के लिए वो अपना टिफिन, अपना भोजन का डब्बा, प्रसाद का डब्बा ले जाते थे साथ में, और जब वहां ले जाते थे तो बीच में दोपहर में कभी बैठकर पिकनिक करते थे, रोज का पिकनिक। आजकल के बच्चों को ऐसा मिलता है नहीं, उनको स्कूल के बीच में 15 मिनट मिल जाता है, जल्दी जल्दी से जो भी ब्रेड बिस्किट खाए वो मुंह में ला डाल देते हैं और फिर से क्लास शुरू, और वो भी एक सीमेंट के बिल्डिंग में बैठना पड़ता है, इमारत में बैठना पड़ता है, कोई वृक्ष नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन वहां श्री कृष्ण भगवान हर रोज पिकनिक किया करते थे और उनको हर रोज दावत थी, फीस्ट, क्योंकि अलग अलग बच्चे जो है अलग अलग चीजें लाते थे, तो एक दूसरे के लाए हुए चीजों का आस्वादन करते थे। तो इस प्रकार से आनंद ही आनंद वृंदावन में। और बाद में जब श्री कृष्ण ऐसे पिकनिक करते थे, आते थे, असुरों तो आते रहते थे, उसके बाद में एक असुर था अघासुर, उसने अजगर का रूप लिया और उसका भी वध कर दिया कृष्ण भगवान ने। और बाद में जब ब्रह्मा जी ने ये देखा कि क्या धूम मचा रखा है सारे ब्रह्मांड भर में, महरलोक, जनलोक, तपलोक इत्यादि से सभी लोग ये कृष्ण को देखने जा रहे हैं नीचे, ये क्या चल क्या रहा है, तो वो भी देखने आ गए नीचे और देखा कि इस बालक ने अघासुर जैसे बड़े असुर का वध किया है और फिर अभी साथ में बैठकर पिकनिक कर रहे हैं अपने ग्वाल बाल मित्रों के संग में। तो ब्रह्मा जी गौरव देखना चाहते थे कृष्ण का, कृष्ण की परीक्षा भी लेना चाहते थे, उनके मन में संदेह भी हो गया कि क्या ये हो सकता है कि ये भगवान है, अगर है तो ये कुत्सित अन्न क्यों खा रहे हैं, उनको खाना चाहिए 56 भोग अगर भगवान है तो, लेकिन ये साधारण ऐसे दही और चावल खा रहे हैं, दाहिने हाथ में दही चावल, बाएं हाथ में थोड़े फल के टुकड़े जो भी दही में मिले हुए हैं, ये तो भगवान का भोजन नहीं हो सकता, भगवान को तो शानदार 56 भोग चाहिए। तो संशय हुआ ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को चुरा लिया, ग्वाल और वत्सों को भी चुरा लिया और छुपा लिया एक गुफे में। उधर भगवान गए कुछ काम से और जब लौट के आए तो ऐसे नाटक किया जैसे कि उनको मालूम नहीं, अरे कहां गए मेरे ग्वाल बाल मित्र, मेरे वत्स कहां गए, भगवान भी नाटक कर रहे हैं, कि ब्रह्मा जी को वो बतलाना नहीं चाहते थे कि वो कौन है वास्तव में, वो अच्छा सबक सिखाना चाहते थे। और फिर भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया और बिल्कुल सारे जो भी वत्स थे और जो ग्वाल बाल थे उनका डुप्लीकेट रूप बनाया, बिल्कुल जैसे थे वैसे, उनके बोलने का ढंग, उनके नाक का आकार, कान, उनके कपड़े, उनके गहने, उनके उठने बैठने का ढंग बिल्कुल वैसे का वैसे, यहां तक कि उनके माता पिता और उनके मित्र कोई पहचान नहीं सका कि ये ग्वाल बाल नहीं है और ये वत्स नहीं है। और ये पूरी 1 साल तक ये चला। तो ये सारे जो ग्वाल बाल कृष्ण के संग आए थे और जो भी वत्स कृष्ण चराने ले गए थे उनके मित्रों के संग, ये सारे वत्स और ये सारे ग्वाल बाल कृष्ण ही थे 1 साल के लिए। तो भगवान ने ये लीला की इसलिए कि वो ब्रजवासियों को मातृ रूप में, पितृ रूप में उनकी सेवा उनसे लेना चाहते थे, क्योंकि अन्य गोपियां भी सोचती थी कि केवल माता यशोदा को अवसर मिल रहा है ऐसे कृष्ण की सेवा करने का, मैं भी चाहती हूं, हम भी चाहते हैं कि ऐसी सेवा करें। तो कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में स्थित हैं, सबकी इच्छाओं को जानते हैं, तो इस 1 साल में सारे ब्रजवासियों की इच्छा उन्होंने पूर्ण की, यहां तक गौओं की इच्छा भी पूरी की, क्योंकि गाय भी चाहते थे कि माता यशोदा उनको दूध पिलाती है लेकिन हम पिलाना चाहते हैं कृष्ण को दूध। तो ये वत्स भी उन गायों के बच्चे थे, तो जब इन गायों ने अपने वत्सों को, अपने बच्चों को दूध पिलाया तो उन्होंने कृष्ण को ही पिलाया, क्योंकि वो वत्स कृष्ण ही थे, उस एक साल के लिए। तो गायों की इच्छा पूरी हो गई, गोपियों की इच्छा पूरी हो गई, और इस प्रकार से सारा ब्रज और भी कृष्णमय बन गया। और एक साल के बाद जब ब्रह्मा जी मजा देखने आए कि देखते हैं क्या मजा हो रहा है वहां, अब ये कृष्ण की क्या हालत है देखते हैं, उनके एक क्षण के बाद, लेकिन यहां एक साल बीत गया, और ब्रह्मा जी ने देखा कि ग्वाल बाल और वत्स जैसे पहले थे एक साल पहले, वैसे ही खेल रहे हैं। तो थोड़े आश्चर्यचकित हो गए, गुफे में गए तो देखा कि ग्वाल बाल और वत्स वहीं वैसे जैसे पहले थे वैसे सो रहे हैं। फिर से दौड़कर आए, यहां भी वत्स और ग्वाल बाल, वहां भी वत्स और ग्वाल बाल, कौन से सही है कौन से नकली है ब्रह्मा जी को पता नहीं चला, उनका सर चकरा गया। और तब उनको साक्षात्कार हुआ कि मैं कितना मूर्ख था कि मैंने भगवान की परीक्षा लेने की इच्छा रखी, वास्तव में मैं तो कुछ भी नहीं हूं, भगवान श्री कृष्ण सूरज के समान है और मैं एक छोटे जुगनू के समान हूं। जुगनू आप जानते हैं ना, तो जुगनू अगर कभी अपना शरीर बड़ा करके सूरज से प्रतियोगिता करने का प्रयास करे तो क्या यह मूर्खता नहीं होगी? तो ब्रह्मा जी यही एहसास कर रहे थे कि मैं कितना मूर्ख था, मैं अपने योग शक्ति का प्रदर्शन योगेश्वर श्री कृष्ण के सामने करने गया, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। तो खैर, फिर ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, श्री कृष्ण के शरण में आए, सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण किए, स्तुति की भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह दिया हां, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाल बाल का रूप धारण कर रहे थे, अभी तक कुमार अवस्था के अंत में ही थे वो, इसलिए ऐसे जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने समाधि किए तो भगवान ऐसे नाटक कर रहे थे जैसे कि उनको मालूम ही नहीं। ब्रह्मा जी चतुर चार सर वाले ब्रह्मा जी खड़े हैं, इतने तेजस्वी स्वर्ण रंग के बड़े विशाल व्यक्ति हैं, ब्रह्मलोक से आए हैं, और उस समय कृष्ण ऐसे नाटक कर रहे थे, सोच रहे हैं ये कौन बड़े आदमी आ गए, चार सर वाले, इतने बड़े बड़े आदमी ऊपर लोक से आते हैं और ये क्या बोल रहे हैं शुद्ध संस्कृत भाषा में, क्योंकि कृष्ण भगवान तो ब्रज भाषा में बोलते थे ना उधर वृंदावन में, और ये ब्रह्मा जी आकर शुद्ध संस्कृत में बोल रहे हैं, सुंदर स्तुतियां बोल रहे हैं, और ये क्या, मैं तो छोटा ग्वाल बाल हूं, ये सब मेरे गुणगान कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है, मैं तो केवल अपने मित्रों को ढूंढ रहा हूं, मैं मेरे ग्वाल बाल मेरे वत्सों को ढूंढ रहा हूं, कहां गए मेरे मित्र। तो ब्रह्मा जी ये सब देख रहे हैं, प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं और साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, कृष्ण भगवान की अपार लीला। तो ब्रह्मा जी को सबक मिल जाता है, ब्रह्मा जी कृष्ण का गुणगान करते करते वापस चले जाते हैं। तो उधर कृष्ण भगवान वापस चले जाते हैं और जो ग्वाल बाल थे जो कि छुपे हुए थे, ब्रह्मा जी ने जिनको छुपाया हुआ था, वो पुनः होश में आ जाते हैं और उनको लगता है कि ये एक साल जो बीत गया मानो एक क्षण बीत गया, उनको पता नहीं चलता कि सारा एक साल बीत गया है, क्योंकि भगवान ने अपनी योग माया शक्ति लगा दी थी। और उन्होंने सोचा कि अघासुर का वध जो कि एक साल पहले हुआ वो अभी अभी हुआ है, क्योंकि अघासुर के वध के तुरंत बाद ब्रह्मा जी ने गायों वत्सों को और ग्वाल बालों को चुरा लिया था, तुरंत बाद हुआ था ये। तो ग्वाल बाल जो थे उन्होंने सोचा कि अभी अभी हुआ है, तो शाम को जब लौट कर गए वृंदावन में तो उस समय उन्होंने ये घटना का वर्णन किया मानो कि यह घटना आज ही हुई है, लेकिन अघासुर का वध वैसे एक साल पहले हुआ था, लेकिन इसका रिपोर्ट वृंदावन में नहीं आया था। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण पुनः अपनी लीला जारी रखी, और फिर भी ऐसे ही लीला करते थे जैसे बंदरों का नकल करना और पुल बांधना नदी के पार, और फिर प्रभु रामचंद्र जी वानर सेना की नकल करना, ऐसी सब लीलाएं करते रहे, और धीरे 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 उनकी कुमार अवस्था का अंत होने को आया। वैसे जन्म से लेकर 5 साल की समाप्ति तक ये कुमार अवस्था कहते हैं, कौमार, और फिर 6ठा वर्ष जब आरंभ हो जाता है उससे 10वें साल की समाप्ति तक ये पौगंड अवस्था कहलाता है, और फिर 11वें साल की शुरुआत से जब 15वें साल समाप्त हो जाता है तो इसको कैशोर अवस्था कहते हैं, किशोर रूप या नव यौवनम। और फिर 16 साल से युव अवस्था शुरू हो जाती है, यौवन। कृष्ण का नित्य रूप किशोर अवस्था का है, नव यौवनम च। हमेशा कृष्ण भगवान ऐसे लगते हैं जैसे कि वो किशोर अवस्था में है। यहां तक कि जब वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे, 125 साल के थे, उस समय भी वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो 16 या 20 वर्ष के लड़के हैं। तो ये भगवान का नित्य रूप है। जब ये बाल लीला करते हैं, कुमार अवस्था से पौगंड अवस्था से गुजरते हैं, तो ये केवल पृथ्वी लोक पर भौतिक ब्रह्मांड के भीतर लीला करते हैं, लेकिन अपने धाम में गोलोक वृंदावन में वो केवल नित्य किशोर रूप में ही रहते हैं। ये भगवान का शाश्वत रूप है। गोलोक वृंदावन में भी भगवान ये बाल लीला का आनंद नहीं लेते हैं। बाल लीला का आनंद और असुरों के वध का आनंद केवल भौतिक ब्रह्मांड में होता है। जब भगवान यहां अवतार लेते हैं तो देखिए कितने भाग्यशाली थे वो ब्रजवासी, क्योंकि उन्होंने ऐसी लीलाएं देखे जो भगवान गोलोक वृंदावन में भी नहीं करते हैं। हालांकि इस वृंदावन में और उस वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। भगवान की अपार शक्ति इतनी है कि जब वो आते हैं, वो न केवल अपने मित्रों को साथ में लेकर आते हैं, पर अपने पूरे धाम को ही लेकर आते हैं और फिर धाम को छोड़कर भी चले जाते हैं। ये है भगवान की अचिंत्य शक्ति जो हमारे समझ के बाहर है। तो भगवान साथ में वृंदावन लेकर आए, वृंदावन छोड़कर चले गए, लेकिन ये वृंदावन को सही ढंग से देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य चक्षु, नहीं तो हम नहीं देख पाएंगे। वृंदावन ये कोई साधारण जगह नहीं है। केवल रेल का टिकट खरीदने से, हवाई जहाज का टिकट खरीदने से हम वृंदावन को देख नहीं सकते हैं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, विषय छाड़िया शुद्ध कबे हवे मन, कबे हमा हेरिबो श्री वृंदावन। उन्होंने बताया है कि कब मेरा मन, मेरा हृदय काम वासनाओं से मुक्त हो जाएगा और कब मैं ये श्री वृंदावन धाम को देख पाऊंगा। अर्थात श्री वृंदावन धाम को देखना है तो हमारी आंखें, हमारा हृदय शुद्ध हो जाना चाहिए, वासनाओं से मुक्त होना चाहिए। नहीं तो हम केवल बाहरी दृष्टि से कुछ झाड़ पेड़ देखेंगे, कोई सुअर कुत्ते बंदर देखेंगे, थोड़े पंडे लोग देखेंगे, थोड़े इमारतें देखेंगे, मंदिर देखेंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है वृंदावन। वृंदावन का जो वर्णन शास्त्र में दिखने में आता है, पढ़ने में आता है, और जो आजकल का वृंदावन है, काफी अंतर है। तो हम सोचेंगे कि ये वृंदावन क्या है, अरे यहां गटर है, इतना गंदगी है, ये है वो है, हम भौतिक दृष्टि से देखेंगे। लेकिन जिसने दिव्य चक्षु प्राप्त कर ली है वो समझ पाएगा कि ऐसा नहीं है। वास्तव में कूजित कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूला कुरे, जैसे पहले था वैसे यहां मोर हैं, वहां हंस हैं, और वहां पर नाना प्रकार के कोकिल भी मधुर वाणी में अपने गीत गा रहे हैं, और यहां कृष्ण बलराम गायों के संग में, ग्वाल बालों के संग रमण रेती में चल रहे हैं, और उधर सेवा कुंज में रासलीला चल रही है, और उधर गोकुल में नंद बाबा यशोदा मैया हमेशा कृष्ण का इंतजार करते हैं कब वो आएंगे लौटकर। ये सब लीलाएं अभी भी हो रही हैं अप्रकट रूप में। प्रकट लीला भगवान ने प्रस्तुत की 5000 वर्ष पूर्व जब वो आए, लेकिन उनके वापस लौटने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो धाम को और अपनी लीलाओं को लेकर गए। अप्रकट रूप में अभी भी ये लीलाएं और ये सारे जो व्यक्ति हैं, इनके भक्त अभी भी हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं है। तो इस प्रकार से ये बाल लीला में भी जब भगवान आए हैं, अवतार लिए हैं, तो जैसे मनुष्य बच्चा बड़ा होते रहता है, और उसी तरह से अपने अपने उस आयु के हिसाब से उपयुक्त व्यवहार भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रदर्शित किया। सही समय पे वो उठने लगे, सही समय पे चलने लगे, सही समय पर वो जो है बात करने लगे, और वो भी तोतली बोली में। धीरे 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 से जैसे शरीर का परिवर्तन होता है, मन और बुद्धि का विकास होता है बच्चे का, उसी प्रकार से कृष्ण ने भी ऐसे लक्षण प्रकट किए। हालांकि कृष्ण के बाल रूप में
और कृष्ण के किशोर रूप में कोई अंतर नहीं है बल और बुद्धि और योग्यता की दृष्टि से। जो कि किशोर कृष्ण कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। मनुष्य जो साधारण मनुष्य होते हैं, जब वो बाल रूप में होते हैं तो उनकी बुद्धि कम होती है। छोटा सा बच्चा ये प्रवचन नहीं समझ सकेगा, ये क्या हो रहा है, उसकी बुद्धि नहीं है उतनी। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं हाँ तो समझ लेते हैं। और छोटे बच्चे का बल भी कम होता है, लेकिन बड़े होकर फिर बल बढ़ जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं है। हर अवस्था में, चाहे वो छोटे बालक हो, चाहे वो किशोर रूप में हो, युव अवस्था में हो, पौगंड अवस्था में हो, भगवान श्री कृष्ण भगवान के भगवान ही रहते हैं। बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता उनमें। ये है भगवत तत्व, ये है कृष्ण तत्व। तो इन सब चीजों को साधारण लोग नहीं जानते हैं, केवल भक्त ही कृष्ण के रहस्य को जानते हैं। और इसलिए वो कृष्ण की लीलाओं से भ्रमित नहीं होते, बल्कि कृष्ण लीला से ज्यादा आनंद लेते हैं और कृष्ण लीला के रस के सागर में डूब जाते हैं और तैरने लगते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अपने पौगंड अवस्था में पहुंचे हैं। और उस समय क्या क्या हुआ, अभी यहां से शुरुआत हो रही है। तो सुखदेव गोस्वामी अभी वर्णन करने जा रहे हैं इस दशम स्कंध के 15वें अध्याय में, कि अभी श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में पहुंच ही रहे हैं। ततश्च पौगंडवयाश्रितो व्रजे बभूवतस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदये वृन्दावनं पुण्यभक्तिव चक्रतुः कहा। जब रहते हुए जब राम तथा कृष्ण ने पौगंड अवस्था प्राप्त कर ली तो ग्वालों ने उन्हें गऊं चराने के कार्य की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। अनुवाद दोहराइएगा। वन में रहते हुए जब राम तथा कृष्ण ने पौगंड अवस्था प्राप्त कर ली तो ग्वालों ने उन्हें गऊं चराने के कार्य की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। तो यहां वर्णन हो रहा है उस समय का, जब श्री कृष्ण पौगंड की अवस्था को प्राप्त कर चुके। और जैसे ही पौगंड अवस्था में प्रवेश किया कृष्ण ने, उनके दिव्य शरीर में, उनके व्यवहार में अंतर नजर आने लगा। जैसे हम देखते हैं किसी साधारण बच्चे में भी, जैसे जैसे वो बड़ा होता है धीरे धीरे उसके व्यवहार में, उसके शरीर में परिवर्तन आने लगता है। तो पहले श्री कृष्ण तो बहुत नटखट, बहुत शरारती थे, लेकिन पौगंड अवस्था की प्राप्ति के बाद उनकी शरारतें, मस्ती जो है वो कम हो गई। और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, कहां गए इसकी शरारत और नटखट, चंचलता इसकी कहां गई। जैसे वेद को पढ़ने वाले जो विद्यार्थी रहते हैं कैसे गंभीर और धीर रहते हैं, तो कभी कभार कृष्ण भी ऐसे ही हो जाते थे। और इस उम्र में वो बहुत ही आकर्षक लगने लगे। कुमार अवस्था में जो उनका सौंदर्य था उससे अधिक अभी इनका सौंदर्य बढ़ गया। ये कृष्ण है, उनके बारे में सब कुछ केवल बढ़ते रहता है, सारे अच्छे गुणों का की वृद्धि ही होती है। अभी भी हर क्षण गोलोक वृंदावन में भी कृष्ण का सौंदर्य हमेशा बढ़ते रहता है। ये हम भौतिक दृष्टि से बुद्धि से समझ नहीं सकते, ये कैसे हो सकता है। यहां हमारे भौतिक शरीर में जो सौंदर्य का विकास या वृद्धि केवल थोड़े समय के लिए होता है, जब तक युव अवस्था हो जाती है, फिर युव अवस्था के बाद फिर से सौंदर्य नीचे आने, बाल सफेद होने लगते हैं, बुढ़ापा आने लगता है, तो नाना प्रकार की चीजें होकर हमारा सौंदर्य नष्ट हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक शरीर जो है सच्चिदानंद विग्रह, वो तो हमेशा नित्य नवायमान, नित्य नव नवायमान, हमेशा फ्रेश रहता है, ताजा रहता है। और इतना ही नहीं, श्री कृष्ण का दिव्य शरीर का सौंदर्य हमेशा बढ़ता रहता है। किशोर अवस्था की प्राप्ति के बाद भी उनका सौंदर्य तो बढ़ता ही रहता है, और उनके गाल जो है, उनके कपोल थोड़े बहुत फूल गए, और उनके उनके व्यवहार में भी फर्क आने लगा कि पहले जब वो वृंदावन के रज में लौटते थे, खेलते थे, जो फूलों के इर्द गिर्द भंवरे घूमते थे उनके पीछे जाते थे, अब ये सब हरकतें करना उन्होंने बंद कर दिया। अभी थोड़े विचार करने लगे, थोड़े गंभीर लगने लगे, और हमेशा इधर उधर तिरछी नजर से देखते थे, मानो कि वो चिंतित हैं, इधर इधर चंचल मन इधर उधर देखते रहते थे। उनकी कमर की चौड़ाई थोड़ी कम हो गई और भी शरीर में सौंदर्य बढ़ने लगा। और जिस प्रकार से वसंत ऋतु में तमाल वृक्ष का तेज और सौंदर्य होता है, खास करके जब अंकुर खिलने लगते हैं और फिर तमाल वृक्ष के ऊपर रंग बिरंगी फूल आते हैं, तो तमाल वृक्ष कितना सुंदर लगता है। तो आनंद वृंदावन चंपू ने कवि कर्णपुर बताते हैं कि इस उम्र में श्री कृष्ण का सौंदर्य ऐसे तमाल वृक्ष के सौंदर्य को भी आसानी से हरा देता था, और फिर मानो ऐसे लगता था कि जैसे जब कोई फूल या अंकुर अभी खिल गया है, पंखुड़ियां निकल रही हैं, तो कैसे नाना प्रकार की चीजें उसे मधु वगैरह आने लगता है, उसी प्रकार से पौगंड अवस्था को प्राप्त होने से मानो कि कृष्ण खिल उठे हैं, उनका सौंदर्य और भी बढ़ गया है, और इतना सुंदर कि मानो उनके शरीर के दिव्य शरीर के हर एक अंग से मधु बह रहा है, ऐसे लग रहा था। और उस समय उनके शरीर का सौंदर्य, उनके शरीर का सुगंध, उनके शरीर की कोमलता, यह भी बढ़ती गई, क्योंकि श्री कृष्ण का शरीर दिव्य है, साधारण नहीं है। और जब श्री कृष्ण सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे तो इन लीलाओं से उनका सौंदर्य और भी बढ़ जाता था। इस प्रकार से अपने सौंदर्य से, अपने मिठास से श्री कृष्ण ने वृंदावन के सारे निवासियों का मन हरण कर लिया। उधर गोपियां वो भी धीरे धीरे से बड़ी हो रही थी। इसी समय की बात है, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए थे तो गोपियां भी उनके थोड़े बाद में ही प्रकट हुए, एक हफ्ते, एक महीने, दो महीने पहले, दो महीने बाद में, मतलब अंतर इतना ही था। तो ये गोपियां भी धीरे धीरे बड़ी हो गई, होती जा रही थी, तो वो भी धीरे धीरे अपना बचपना त्याग रही थी, और गोपियों के भीतर भी एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा था। और वो क्या है कि कृष्ण के प्रति आकर्षण अभी धीरे धीरे से जागृत हो रहा था, और जागृत होते होते इतना तीव्र बनते जा रहा था कि उनके मन की शांति बिल्कुल भंग होती जा रही थी। लेकिन फिर भी गोपियां ये बाहर किसी को समझने के लिए वो इतनी अच्छी तरह से ढक के रखती थी कि किसी को ये लक्षण दिखने में नहीं आते थे। इसलिए कवि कर्णपुर बताते हैं कि गोपियां वो एक प्रकार के चावल के दाने के बराबर थी, जो कि अंदर से पका हुआ है जो दाना, और बाहर से कच्चा लगता है। मतलब बाहर से लगते थे छोटे बच्चे हैं, अभी 5-6 साल की उम्र है, लेकिन अंदर से भक्ति की भावना इतनी विकसित हो गई थी कि महाभागवत के स्तर पे ये आकर्षण। लेकिन बाहरी रूप से बचपना तो काफी कुछ चला गया था, लेकिन फिर भी थे आखिर 5-6 साल के। तो इस प्रकार से गोपियां हमेशा दिन रात ये आतुरता से राह देखती, कब वो समय आएगा जब हम कृष्ण का संग प्राप्त करेंगे, कब वो दिन आएगा जब हमेशा हम कृष्ण के साथ लीला करेंगे। तो इस प्रकार से कृष्ण का स्मरण वो किया करते थे और आपस में एक दूसरे के बारे एक दूसरे से परस्पर कृष्ण भगवान की ही बात किया करते थे। और बीच में कभी कभी उनको एक थोड़ा बहुत चिंता या असुरक्षित भावना नजर आती थी जैसे जैसे वो बड़े होते थे कि कृष्ण से इतना आकर्षण हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। कभी कभी उनको समझ में नहीं आता था। कवि कर्णपुर वर्णन करते हैं कि कृष्ण की जो कांति है शरीर की, वर्ण का रंग, वो नील कमल के तरह था या तो एक नील रंग के हीरे के तरह था या तो फिर एक बरसात के मौसम के ताजे बादल की तरह था। श्याम मेघल कोमलांगो। और श्रीमती राधारानी का जो की जो शरीर की कांति थी वो एक स्वर्ण रंग के चंपक फूल की तरह था, वो बिजली की तरह था और पिघले हुए सोने की तरह था। तो यहां इतने विस्तार में वर्णन हुआ है और अन्य शास्त्रों में कि भगवान कैसे दिखते हैं, उनके पार्षद कैसे दिखते हैं। और उस प्रकार से गोपियां भी उनका सौंदर्य प्रस्तुत प्रकट करते जा रहे थे। कवि कर्णपुर बताते हैं कि एक भी गोपी अगर पार्वती देवी के सामने खड़े हो जाए तो पार्वती देवी का जो अभिमान है अपने सौंदर्य का वो पूरा नष्ट हो जाता, क्योंकि हर एक गोपी का दिव्य सौंदर्य इतना था। और आगे गोपियां इधर उधर घूमती फिरती, चंचलता तो थी लेकिन फिर भी भगवान के प्रति जो आकर्षण था उससे इतने प्रभावित होते थे, लेकिन कितना भी वो चाहें उन लक्षणों को ढकने के लिए थोड़ा कुछ निकल आता था। और उनके जो रिश्तेदार थे, परिवार के सदस्य थे, धीरे धीरे समझने लगे कि कुछ परिवर्तन हमारे बच्चों में हो रहा है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें वृंदावन में हो रही थी इस समय। जबकि ततः पौगंड, ततः मतलब उस समय, फिर उसके बाद में, किसके बाद में, ब्रह्म विमोहन लीला हो चुकी है और ये ग्वाल बाल के संग कृष्ण भगवान ये सब लीला कर रहे हैं, बंदरों के साथ में खेलना, खेलकूद करना। और उसके बाद में जैसे उन्होंने प्रवेश किया, ततश्च पौगंड वयः, पौगंड वय 6 साल की उम्र में क्या किया, श्रीतो प्रवेश किया व्रजे, व्रज के अंदर। तो ये वर्णन अभी चलेगा कि जब भगवान श्री कृष्ण 6 साल की उम्र में हुए तो वृंदावन में क्या हो रहा था, ये सब चीजें हो रही थी। कृष्ण भगवान के दिव्य शरीर का परिवर्तन, उनके व्यवहार में परिवर्तन, उसी तरह से गोपियों के शरीर में, उनके व्यवहार में, उनके सोचने के ढंग में परिवर्तन। और उस समय आगे क्या हुआ यहां वर्णन कर रहे हैं। बभूवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ, दोनों कृष्ण और बलराम उनको पशुपाल सम्मतौ, उनको गाय चराने की अनुमति दी गई। अभी प्रश्न सवाल ये आता है कि क्या पहले वो गाय नहीं चराया करते थे, पहले वो वत्स चराया करते थे, अभी गाय चराने की अनुमति उनको मिली। दोनों में अंतर है क्योंकि गाय जब बड़ी हो जाती है तो उनको संभालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है और छोटे बच्चे कभी कभार संभाल नहीं सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे वत्सों को, गाय के बछड़ों को संभाल सकते हैं। इसलिए ब्रज में यह प्रथा थी कि जब बच्चे छोटे थे कुमार अवस्था के अंत तक वो केवल वत्सों के साथ जाते थे और जब पौगंड अवस्था की प्राप्ति कर लेते तब उनको बड़े गाय दिए जाते थे चराने के लिए। तो कितनी सुंदर बात है कि बचपन से ही उनको गौओं का संग था, गाय की सेवा हमेशा वो करते रहे। इस प्रकार से पहली बार जब श्री कृष्ण गाय चराने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा तो सबने सोचा, नंद महाराज और माता यशोदा ने, कि नहीं नहीं, अभी कृष्ण तो इतना छोटा है, इतना कोमल है, नाजुक है और खतरे कितने हैं वहां, बड़े बड़े गायों को हमारे कैसे संभाल पाएगा। आजकल के जो गाय हैं और 5000 वर्ष पहले के गायों में बहुत अंतर है। जिस प्रकार से आज के मनुष्य और उस समय के मनुष्य में भी बहुत अंतर है। तो गाय भी काफी बड़े हुआ करते थे। आजकल भी हम देखते हैं यहां ऐसे ऐसे बैल हैं जो कि 5.5-6 फुट ऊंचे होते हैं, जैसे ओंगोल बैल आंध्र प्रदेश में, कभी कभी 6 फुट ऊंचे, हमसे भी ऊपर ऐसे देखना पड़ता है बैल को, इतने मजबूत, इतने बड़े। तो उस जमाने में गाय बैल कैसे हुए होंगे हम समझ सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि बच्चों को गायों को चराने के लिए अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन जब पौगंड अवस्था में आए तो ये अनुमति दी गई। तो इसके क्या कारण था? 3 कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि कृष्ण अपने माता पिता के पास गए, कहने लगे, हे माता, अभी मैं बड़ा हो गया हूं, मैं 6 साल का होने को आया, 5 साल समाप्त हो गए, अब मेरे शरीर में बल बढ़ रहा है, मेरी बुद्धि भी बढ़ रही है, अब मैं थोड़ा बड़ा हो रहा हूं तो मैं गायों को संभाल सकता हूं, केवल वत्सों के संभालने की आवश्यकता नहीं है। तो माता यशोदा नंद महाराज थोड़े हिचकिचा रहे थे, अभी भी कृष्ण छोटा है। लेकिन और जो वृंदावन के निवासी थे, गोपगण गोपियां, सोचने की ठीक है, अब चलो कृष्ण इतना ही कह रहा है तो चलो उसको भी गाय चराने की अनुमति दे देते हैं, आखिर वैसे भी हमारे गांव में जब पौगंड अवस्था की प्राप्ति होती है तो गाय चराते हैं, तो चलो अब दे देते हैं। काफी सलाह मशवरा के बाद में ये निष्कर्ष पर पहुंचे। दूसरा कारण ये था कि कृष्ण के साथी जो थे वो भी पौगंड अवस्था में पहुंच चुके थे और उनके माता पिता ने उनको अनुमति दे दी थी गाय चराने के लिए, और वो बच्चे कहने लगे अपने माता पिता से, जब तक कृष्ण गायों के साथ नहीं जाएगा हम भी गाय नहीं चराएंगे, हम भी वत्सों के साथ नहीं जाएंगे। क्यों ऐसे? क्योंकि वत्सों को और गायों को अलग अलग चराया जाता था। क्यों ऐसे, कोई बता सकते हैं? वत्स और गाय अगर साथ में रखे जाएं तो क्या होगा? आप सब जानते हैं, वत्स तो गाय के सारे दूध पी जाएंगे, फिर वृंदावन के लिए दूध क्या रह जाएगा? तो इसलिए वत्सों को अलग और गायों को अलग चराया जाता था। छोटे बच्चे वो वत्सों को एक जगह लेकर जाते थे और जो गोप थे वो गायों को लेकर दूसरी ओर जाते थे, कहीं पर दूर उल्टी दिशा में, ताकि गाय और वत्स कहीं मिले नहीं। और तो अगर कृष्ण वत्सों के साथ में ही रहते और ये जो उनके साथी थे वो जो पौगंड अवस्था में आए थे उनको गायों की जिम्मेदारी दी जाती तो ये बच्चे बोलते थे फिर हम कृष्ण से अलग हो जाएंगे, तो या तो हमें वत्सों का पालन करने दे दो या तो कृष्ण को गाय चराने दे दो, दोनों में से हम कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं गाय के साथ रहो वत्स के साथ रहो, हमें कृष्ण के साथ रहना है। लेकिन कृष्ण बोल रहे थे मुझे गाय चरानी है। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण भी था कि जो वत्स कृष्ण और उनके ग्वाल बाल मित्र चराया करते थे वो भी तो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे ना, वो भी अभी गाय हो गए थे, वत्स तो हमेशा नहीं रहते ना, वो भी गाय हो गए थे, उनकी भी उम्र बढ़ गई थी, तो वो भी अभी गायों के साथ जा रहे थे चरने के लिए। लेकिन विडंबना ये हो गई कि ये वत्स भी जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जब वो कृष्ण के साथ इतने 2-3 साल रहे, कृष्ण ने उनको चराया, तो भले कृष्ण का संग कैसा छोड़ते वो, जितना भी ब्रजवासी प्रयत्न करते ये वत्स नहीं जाते उधर। तो ब्रजवासियों ने सोचा कि अगर इन गायों को अभी चराने ले जाना है तो कृष्ण ही कर सकता है, तो कृष्ण को ही अभी गायों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तो इसलिए अभी इस समय कृष्ण बलराम और अन्य ग्वाल बाल ये बड़े गायों को चराने लगे। तो ये बहुत सुंदर उत्सव हुआ। ज्योतिषों ने एक शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त ढूंढा, कौन सा अच्छा दिन होगा भगवान श्री कृष्ण और बलराम को गायों चराने के लिए, और फिर वो समय आया। पुराणों में वर्णन है कि उस दिन का बताया जाता है, शुक्लाष्टमी कार्तिके तु स्मृता गोपाष्टमी बुधे तद्दिनाद वासुदेवो भूत गोपः पूर्वं तु वत्सपः। शुक्लाष्टमी कार्तिके, कार्तिक महीने, कार्तिक मास के शुक्लाष्टमी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये 2 पक्ष होते हैं, अमावस्या से पूर्णिमा में जब चंद्रमा की वृद्धि होती है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और पूर्णिमा से अमावस्या जब चंद्रमा का घटन होता है, रोशनी का घटन होता है, तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण मतलब अंधकार या काला। तो शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन कार्तिक मास में यह घटना हुई। स्मृता गोपाष्टमी बुधे ही, जो बुध जो बहुत बुद्धिमान विद्वान लोग हैं, इस दिन को गोपाष्टमी कहते हैं, क्योंकि इस दिन क्या हुआ, तद्दिनाद उस दिन पर वासुदेव अभूत, वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण अभूत बने, क्या बने, गोपह। तो वो गोप बने, गायों को चराने के लिए वो पहले उन्होंने जिम्मेदारी हासिल की। तो क्या पहले वो गोप नहीं थे? नहीं, पूर्वम तु वत्सपह, वत्सपालक थे वो, इसलिए अब जाकर वो गोप बने हैं, उनका प्रमोशन हो गया है, वत्सपाल से लेकर गोपालक तक। नंद महाराज और यशोदा मैया हमेशा सोचती थी कि अभी कृष्ण तो नाजुक है, बालक है, तो कैसे होगा, लेकिन कृष्ण भगवान की शक्ति में कोई घटन नहीं है। जैसे पहले चर्चा किया हमने कि भगवान छोटे हैं इसलिए काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। हर अवस्था में भगवान पूरी तरह से समर्थ रहते हैं सब कुछ संपन्न करने के लिए। लेकिन क्योंकि योग माया के प्रभाव से नंद महाराज और यशोदा मैया के हृदय में स्नेह इतना था कि वो अपने बच्चे को साधारण बच्चा समझते थे और सोचते थे कि ये अयोग्य है बड़े गायों का देखभाल करने के लिए। हमेशा माता यशोदा कृष्ण का देखभाल करती थी, अरे ठीक से खा रहे हो ना, ठीक से पी रहे हो ना, देखो बीमार पड़ जाओगे, मिट्टी नहीं खाना, ऐसा नहीं करना। और कृष्ण की सुरक्षा के लिए माता यशोदा हमेशा चिंतित रहती थी। ये नहीं जानती थी कि जिनकी सुरक्षा वो देखने जा रही है वही सारे ब्रह्मांड की सुरक्षा देख रहे हैं। लेकिन स्नेह की वजह से, स्नेह इतना गाढ़ा था, इतना तीव्र था कि वो भूल चुके थे कि ये अपना बच्चा जो है वो स्वयं भगवान है। तो सुखदेव गोस्वामी यहां सुंदर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से जब जिस दिन श्री कृष्ण ने वत्सों का चरना शुरू किया तो उस दिन कैसी घटना हुई। तौ वत्स पालकौ भूत्वा सर्वलोकैक पालकौ सप्रातराश गोवत्सांश चारयन्तो विचेरतुः। दो तीन साल पहले की बात, जब कृष्ण और बलराम को वत्स पालन करने की अनुमति दी गई, तो वत्स पालको भूतवा, तो वत्स के पालक हो गए। कौन हो गए? सर्वलोकैक पालको, जो सारे ब्रह्मांडों के पालक हैं वो आज क्या हुए हैं? वत्सों के पालक हुए हैं। सब प्रातर आश गोवत्सांश चारयंतो विचेरत हो। सब प्रातः काल में क्या किया उन्होंने? आशो, भोजन लिया, अपना प्रसाद लिया और फिर गए। कहां गए? गोवत्सांश चारयंतु विचेरतु, गोवत्स को चराने के लिए ले गए। तो सुखदेव गोस्वामी का सुंदर वर्णन है कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के पालक हैं वो आज केवल एक वत्स पालक के रूप में जा रहे हैं। और नंद महाराज और यशोदा माता की का स्नेह इतना तीव्र था कि वो समझ नहीं पाए कि जिनको हम वत्स पालक ही समझ रहे हैं और जिसको हम गोपालन करने की जिसके अंदर शक्ति नहीं है ऐसा समझ रहे हैं, वो सर्वलोकैक पालक हो, सारे लोगों के पालक वही है। तो देखिए सुखदेव गोस्वामी के वर्णन से कितना मिठास बढ़ता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने यह रस शास्त्र बनाया है, श्रीमद् भागवत, जो वास्तव में पढ़ सके और जो समझ सके और सुन सके, वो हर शब्द में हर अक्षर में देखेगा कि बूंद बूंद रस यहां गिर रहा है, टपक के गिर रहा है इस श्रीमद् भागवत के। अहो महु रसिका भुवि भावुका, तो जो रसज्ञ हैं, रसिक लोग हैं, वो इस चीज को समझ सकते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये जो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् सारे वेदों का बिल्कुल परिपक्व फल है। निगम गलितम फलम, निगम मतलब वेद, गलित फल मतलब परिपक्व पका हुआ फल है। और शुक मुखाद, सुखदेव गोस्वामी के मुख से अमृत, ये अमृत निकल रहा है, द्रव संयुतम और भी स्वादिष्ट हो गया है। पिबंती भागवत, हे भागवत को पियो, रसम आलयम, ये रस है। तो वेदव्यास जी अपने श्रोतागण को बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी से के मुखारविंद से ये रस जो कि पहले से भी बहुत स्वादिष्ट था अब और भी मीठा हो गया है। जैसे तोता जब कोई फल को चख लेता है, जैसे सेब को, तो कहते हैं कि वो सेब की या फल की मिठास बढ़ जाती है। और शुक ये शब्द का अर्थ तोता भी होता है और सुखदेव गोस्वामी भी है, दोनों का अर्थ है। उनका नाम भी सुखदेव था और शुक शब्द का अर्थ भी होता है तोता। तो जिस प्रकार से तोता एक फल को चख कर उस फल की मिठास को बढ़ाता है, स्वाद को बढ़ाता है, उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता श्रील व्यास देव से श्रीमद भागवत का श्रवण किया, उसका पचन किया और फिर जब फिर से उसका कीर्तन किया परीक्षित महाराज के सामने, तो क्या हुआ, द्रव संयुतम ऐसे रूप में प्रस्तुत किया कि बस रस से भरा हुआ था। और जो रसिक हैं, जो जानते हैं कैसे खाना है, कैसे पान करना है इसका, वो इसमें आनंद लेते हैं। लेकिन जो लोग रसिक नहीं हैं, वो नहीं जानते कि इससे रस कैसे बाहर निकालना है। आखिर मान लो एक आम का पेड़ है या किसी को आम दिया जाए, लेकिन वो जानता नहीं है कि इस आम को आप उस आम को कैसे खाना है, तो फिर वो इस स्वाद को नहीं ले पाएगा, वो केवल उस छिलके को खाता रहे और सोचे कि यही आप उस आम है, लेकिन असली जो अंदर रस है वो नहीं पाएगा। उसी तरह से जो ज्ञानी है वो लोग ऐसे छिलका आम का खाते हैं, श्रीमद भागवत के छिलके को खाते हैं, अर्थात सही रस उनको नहीं मिलता, केवल ज्ञानी है, अपने ज्ञान से अपने बुद्धि के बल से कृष्ण को, कृष्ण लीला को समझने का प्रयास करते हैं। और जो कर्मी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो केवल बीज को खाते हैं, सोचते वाह, लेकिन बीज का स्वाद क्या है, क्या आम के बीज का स्वाद होता है, नहीं होता। लेकिन जो भक्त होते हैं वो असली आम को खाते हैं, असली रस को। तो श्रीमद् भागवत केवल भक्तों के लिए है और सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं जिससे कि श्री कृष्ण की लीला का रस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो यहां ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। एक सुखदेव गोस्वामी बताते हैं सर्व एक लोक पालो, जब वो सारे लोगों के नाथ हैं, वो आज एक साधारण वत्सों को पालन कर रहे हैं और उनके माता पिता सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा ये लोग नहीं कर पाएंगे। ये है कृष्ण लीला का माधुर्य। तो जिस दिन आखिर में नंद महाराज और माता यशोदा ने अनुमति दे दी और कृष्ण भगवान ने गऊओं को चराना आरंभ किया, उसको गोपाष्टमी कहते हैं। और उस दिन श्री कृष्ण का प्रमोशन हो गया और वो गोप बने। तो ठीक है, अभी आज रविवार है, आज यहीं इस श्लोक को समाप्त करते हैं, कल से और आगे लीला को बढ़ाएंगे और थोड़ी और तेजी से जाएंगे धीरे धीरे से। और फिर गौचारण लीला अभी चल रही है, गौचारण लीला को ही आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद में फिर धेनुकासुर का वध हमने बलराम जयंती के दिन कल चर्चा की थी, तो हम यहां कल चर्चा परसों चर्चा नहीं करेंगे, सीधे आगे चले जाएंगे जहां श्री कृष्ण कालिया दमन की लीला प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।